أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستو اور بھائیو السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں غسل کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں غسل کس پرکار کیا جاتا ہے, غسل کے کتنے طریقے ہیں یہ بتایا, اور غسل کے پانی کی کیا کیا شرطیں ہیں یہ بھی بتایا. اب اسی غسل سے سمبندھت کچھ مسئلے اور ہیں جو ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کے سمکش پرستت کریں گے. غسل جنابت میں اگر کوئی انسان مجنب ہوتا ہے اور مجنب ہونے کے بعد جنابت کا غسل انجام دے دیتا ہے, غسل جنابت کر لیتا ہے, تو اس کے بعد اس کے لیے نماز کے لیے وضو کرنا آوشیک نہیں ہے. یعنی انسان غسل جنابت کے بعد اس کے اوپر واجب نہیں رہ جاتا ہے کہ نماز آدی پڑھنے کے لیے غسل جنابت کے بعد وضو بھی کرے, بلکہ اسی غسل سے ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتا ہے, چاہے وہ نماز واجب ہو اور چاہے وہ نماز مستحب ہو. اسی کے بعد غسل میں ایک بات یہ آتی ہے کہ جس سمے انسان غسل کر رہا تھا تو اگر اس کے شریر کے کسی بھاگ پر کوئی اپوترتا یا کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے, کیا آدیش ہے اس کے بارے میں. تو کہا یہ گیا ہے کہ اگر کسی انسان کے شریر کے کسی بھاگ پر اپوترتا لگی ہوئی ہے یا نجاست لگی ہوئی ہے اور وہ غسل کرنا چاہتا ہے, تو اگر وہ غسل ارتماسی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آوشیک یہ ہے کہ غسل ارتماسی کرنے سے پہلے اس اپوترتا کو پاک کرے, ہٹائے, شریر کو پوتر کرے. شریر کو پوتر کرنے کے بعد غسل ارتماسی انجام دے. غسل ارتماسی کے لیے شریر کے بھاگوں کا پوتر ہونا آوشیک ہے. لیکن اگر انسان غسل ترتیبی کرنا چاہتا ہے تو کہا یہ گیا ہے کہ غسل ترتیبی میں شریر کے انگ کا پہلے سے پوتر ہونا آوشیک نہیں ہے, مگر کیا, بلکہ آوشیک یہ ہے کہ جس سمے انسان شریر کے جس بھاگ کو غسل کرنا چاہتا ہے, غسل کی نیت سے دھونا چاہتا ہے, شریر کا وہ بھاگ پوتر ہو. یعنی کیا, یعنی یہ کہ اگر جیسے داہنا حصہ دھونا چاہتا ہے غسل کی نیت سے تو پہلے داہنا حصہ پاک ہو, داہنا بھاگ پاک ہو, پوتر ہو. اگر داہنا بھاگ پوتر ہے اور بایاں بھاگ اپوتر ہے تب بھی انسان کا غسل ترتیبی صحیح ہوگا. یعنی جس سمے داہنا بھاگ دھل رہا تھا اس سمے یہ پوتر تھا, داہنا بھاگ دھل لیا, اب جب بایاں بھاگ دھلنے کی نوبت آئی تو پہلے اس کو پوتر کیا, پوتر کرنے کے بعد غسل کی نیت سے دھل لیا. تو اگر انسان اس پرکار کرتا ہے تو اس کا غسل ترتیبی ہونے کے انوسار صحیح ہوگا. یعنی شرط یہ ہے کہ جس بھاگ کو جس سمے دھلا جا رہا ہے وہ غسل کی نیت سے اس سمے وہ پوتر ہو. اس سے پہلے اگر اب پوتر بھی ہے تو غسل ترتیبی پر اس سے کوئی ہانی نہیں ہوئی, کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. اور اسی میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ انسان جس سمے غسل کر رہا ہے اس سمے اس کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ شریر کے ہر بھاگ پر پانی کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی پھرائے. یعنی اگر یہاں پر پانی جا رہا ہے تو پہلے ہاتھ پھرا رہا ہے, یہاں پانی جا رہا ہے تو پہلے ہاتھ پھرا رہا ہے, نہ, یہ آوشیک نہیں ہے. بلکہ آوشیک یہ ہے کہ پانی شریر کے ہر انگ تک پہنچ جائے. اگر پانی سوئم پہنچ جاتا ہے تو ٹھیک, اگر نہیں پہنچتا ہے تو ہاتھ کے ذریعے سے پانی کو پہنچایا جائے. یعنی ہاتھ کا پھرانا واجب نہیں ہے, پانی کا پہنچانا واجب ہے. جس طریقے سے بھی, جس سادھن سے بھی آپ پانی پہنچا سکتے ہیں اس طرح سے پانی پہنچائیں. اگر شریر کے ہر بھاگ پر پانی پہنچ جاتا ہے تو انسان کا غسل ترتیبی یا ارتماسی ہونے کے انوسار صحیح ہوگا. ایک بات یہ بہت سوال پوچھا جاتا ہے, بہت پرشن آتا ہے اس پرکار کا کہ اگر کوئی انسان غسل کر رہا تھا, غسل کرتے سمے کچھ ایسا جس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے اگر انسان سے پرکٹ ہو گیا تو کیا اس کا وضو صحیح ہوگا یا نہیں. یعنی کیا مطلب, یعنی انسان غسل کر رہا تھا, غسل کرتے کرتے بیچ میں اس کے پیشاب نکل گیا یا پخانہ نکل گیا या रियाह निकल गई, इस तरह की चीज़ें हो गई जिनको हदस-ए असगर कहा जाता है। हदस-ए असगर उन चीज़ों को कहा जाता है जिनके होने के बाद इंसान के ऊपर वुज़ू वाजिब होता है, गुस्ल नहीं, वुज़ू वाजिब होता है। अगर गुस्ल करते समय ये चीज़ें हो जाएं तो गुस्ल का क्या आदेश है? तो कहा यह गया, फुकहा ये कहते हैं कि अगर इंसान के गुस्ल करने की हालत में ये चीज़ें जाहिर हो जाएं, प्रकट हो जाएं, तो उसके गुस्ल के ऊपर कोई असर नहीं होता है, उसका गुस्ल सही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर गुस्ल करने के बाद ऐसा हो जाता है तो इंसान को नमाज के लिए दोबारा वुज़ू करना होगा। तो ये उसके संबंधित थी। अब अगर इंसान कोई गुस्ल कर रहा था, गुस्ल कर चुका, गुस्ल करने के बाद उसको समझ में आया कि शरीर के किसी एक भाग पर पानी नहीं पहुंचा था, किसी कारणवश कुछ रह गया था, कुछ हो गया था जिसकी वजह से पानी नहीं पहुंच पाया, तो अब इसका आदेश क्या है? तो फुकहा ये कहते हैं कि अगर किस शरीर के किसी भाग पर पानी न पहुंच पाए और वो अंग सूखा रह जाए, तो अगर इंसान ने गुस्ल इरतमासी किया था, अगर इंसान ने गुस्ल इरतमासी किया था और शरीर का कोई भाग सूखा रह गया है, तो उसका गुस्ल बातिल है, उसके लिए वाजिब ये है कि दोबारा से पूरा का पूरा गुस्ल अंजाम दे। लेकिन अगर उसका गुस्ल गुस्ल तरतीबी था, तो इसमें अलग अलग तरीक़े हैं कि अगर कोई इंसान गुस्ल तरतीबी कर रहा था और तरतीबी करने के बाद उसने जैसे अपने शरीर के बाएं हिस्से पर, अंग के बाएं भाग पर ये देखा कि उसका बायां भाग कुछ हिस्सा सूखा रह गया जहाँ पर पानी नहीं पहुँचा, तो अगर वो सूखा भाग शरीर के बाएं हिस्से पर है तो अगर केवल उसी को धुल ले तो उसका गुस्ल सही होगा। लेकिन अगर वो सूखा अंग शरीर के दाएं भाग पर है, यानी अगर दाएं भाग पर, हाथ पे या किसी और जगह पर वो अंग सूखा रह गया है, तो उसके लिए वाजिब ये है कि उस दाएं भाग को धोए और दाएं भाग को धोने के बाद फिर बाएं भाग को धो ले और उसका गुस्ल सही होगा। पूरा सर और गर्दन ये सब धुलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो सूखा भाग सर पे या गर्दन पे रह गया है, तो उसके लिए आवश्यक है पहले सर और गर्दन धोए, फिर दाहिना हिस्सा धोए, फिर बायां हिस्सा धोए। इस प्रकार जब सारे कार्य अंजाम देगा तो उसका गुस्ल सही कहलाया जाएगा। और एक बात और भी है कि इंसान जिस समय गुस्ल कर रहा है, तरतीबी गुस्ल कर रहा है, तो उसके लिए आवश्यक यह है कि पहले दाहिना भाग धोए फिर बायां भाग। इसी में एक चीज़ जो शरीर के दो अंग आते हैं वो है एक नाभि का अंग, नाभि का भाग, और एक आता है गुप्तांग। इसके लिए कहा यह गया आधी नाभि एक तरफ धोई जाए, यानी जब दाहिना हिस्सा धो रहा था तो आधी नाभि दाहिने भाग के साथ धोए, आधी नाभि और गुप्तांग बाएं भाग के साथ धोए। तो अब चूंकि इंसान को इस बात की यकीन करना आवश्यक है कि उसकी दाहिनी, उसकी आधी नाभि और उसका आधा गुप्तांग धोया जा चुका है हर हर दो तरफ से, इसलिए उसके लिए बेहतर ये है कि जिस समय दाहिना हिस्सा धो रहा था उस समय ही पूरी नाभि और गुप्तांग को धुले, जिस समय बायां भाग धो रहा था उस समय भी पूरी नाभि और पूरे गुप्तांग को बाएं हिस्से के साथ भी धोए, दाहिने के साथ भी पूरा, बाएं के साथ भी पूरा। अगर इस प्रकार करें तो ये उसके लिए बेहतर है और उसके गुस्ल के सही होने में कोई संदेह नहीं रह जाता है। अगर इंसान ने गुस्ल कर लिया और गुस्ल करने के बाद उसको अपने शरीर पर एक चीज़ दिखाई देती है जो लगी हुई थी, अब उसको ये समझ में नहीं आया कि ये जो चीज़ लगी थी वो पानी में रुकावट थी या नहीं थी, अगर वो इंसान इस चीज़ को देखता है और उसको इस बात का यकीन हो जाता है कि जो चीज़ लगी हुई थी वो पानी में रुकावट नहीं थी, अगर पानी में रुकावट ना होने का उसे विश्वास हो जाता है तो उसे दोबारा गुस्ल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उसे इस बात का शंका होती है कि पता नहीं जो चीज़ लगी थी वो रुकावट थी या नहीं थी, तो अगर जिस समय गुस्ल कर रहा था उसने उसको देख लिया है, तो उसके लिए वाजिब यह है, अनिवार्य यह है कि उसको पहले हटाए, हटाने के बाद गुस्ल को पूरा अंजाम दे। यानी अगर दाहिने भाग पर लगा था तो पहले उसको हटाए, उसके बाद उसको अंजाम दे गुस्ल को, बाएं भाग पर लगा था तो उसको पहले हटाए, बाएं भाग से हटाने के बाद गुस्ल को आगे बढ़ाए। तो इस प्रकार उसके लिए आवश्यक है पहले उसको हटाए फिर उसके बाद उसको अंजाम दे। अगर कोई इंसान इसी प्रकार गुस्ल करता है, जिस समय उसने गुस्ल किया, गुस्ल कर लिया, अब गुस्ल करने के बाद उसको संदेह होता है इस बात का कि पता नहीं मेरा गुस्ल सही था या नहीं, गुस्ल करते समय नहीं, गुस्ल कर चुका है, गुस्ल करने के बाद इस बात का संदेह हो रहा है कि जो मैंने गुस्ल किया था वो गुस्ल सही था या नहीं था, तो अगर गुस्ल करने के बाद ये संदेह पैदा होता है तो उसका गुस्ल सही है और उसको दोबारा गुस्ल करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार एक मसला और यहाँ पैदा होता है कि अगर कोई इंसान कभी उसको जनाबत की आवश्यक जनाब मुजनिब हो गया, उसको गुस्ल की आवश्यकता थी और उसने उसको याद ही नहीं रहा कि उसने गुस्ल किया है या नहीं किया है, और बहुत से नमाज़ें पढ़ डाली या एक दो रोज़े थे वो भी रख डाले, और ये सब जो है कुछ दिनों बाद उसको याद आया कि पता नहीं मैंने गुस्ल किया भी था या नहीं किया था। तो ये जो कार्य अंजाम दे दिए उनके लिए क्या आदेश है? तो फुकहा ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान भूल जाए कि उसने गुस्ल किया था, गुस्ल जनाबत किया था या नहीं किया था, और उसके साथ कुछ कार्यों को अंजाम दे दे, तो वो कार्य जो उसने पहले अंजाम दे दिए हैं वो सही हैं, लेकिन उसके आगे के जो कार्य होंगे उसके लिए आवश्यक ये है कि इंसान दोबारा गुस्ल जनाबत को अंजाम दे। तर्तीबी या इतमासी ये उसका अपना अख्तियार है, वो जैसे चाहे अंजाम दे, गुस्ल जनाबत करे। गुस्ल जनाबत करने के बाद उसको चाहिए कि अपने आगे के मसाइल को आगे बढ़ाए। अगर उसने दोबारा गुस्ल जनाबत नहीं किया है और इसी प्रकार आगे बढ़ता चला गया है तो अब जो कार्य अंजाम दे रहा है उसके कार्य वो सही नहीं होंगे। तो ये वो मसले थे जो गुस्ल जनाबत से संबंधित थे। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर हम खुद गुस्ल के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो जिस प्रकार हमने ये भी बताया कि कुछ गुस्ल ऐसे होते हैं जो मर्द और औरत, महिला और पुरुष दोनों के ऊपर वाजिब होते हैं, जिनमें से सबसे पहला गुस्ल वो था कि जो गुस्ल जनाबत कहा जाता है, यानी गुस्ल जनाबत महिला को भी उसकी आवश्यकता होती है, पुरुष की भी आवश्यकता होती है। इसी में एक मसला और भी है जो बता दूं कि जिस प्रकार कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सोते वक्त उसकी वीर निकल जाती है, स्वप्नदोष जिसे कहा जाता है, अगर हो जाता है तो जिस प्रकार मर्द को स्वप्नदोष होने के बाद जनाबत की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अगर कोई स्त्री रात में सोते वक्त मुजनिब हो जाए और उसको इस बात का विश्वास हो जाए कि उसकी वीर निकली है, तो उसके ऊपर भी गुस्ल जनाबत करना वाजिब होगा। तो ये गुस्ल जनाबत से संबंधित मसले थे, जो वो गुस्ल जो मर्द और औरत दोनों पर वाजिब होता है। इसके बाद जो दूसरा गुस्ल होता है और मर्द और औरत, महिला और पुरुष दोनों के ऊपर वाजिब होता है, वह गुस्ल गुस्ल मसे मैत है। गुस्ल मसे मैत किसे कहते हैं? गुस्ल मसे मैत इस चीज़ को कहा जाता है कि इंसान किसी मुर्दे को मर जाने के बाद किसी मुर्दे को छू ले। किस समय छू ले? जब वो मुर्दे को तीनों गुस्ल ना दिए गए हों और वो मुर्दा ठंडा हो चुका हो। तो अगर किसी मुर्दे को गुस्ल नहीं दिए गए हैं और वो उसका शरीर ठंडा हो चुका है, तो अगर शरीर के किसी भाग के माध्यम से उस मुर्दे को छूता है तो उसके ऊपर गुस्ल मसे मैत वाजिब होगा। इस गुस्ल मसे मैत में और भी कुछ चीज़ें हैं कि गुस्ल मसे मैत की किस किस वक्त गुस्ल मसे मैत वाजिब नहीं होता है, और कौन कौन से मुर्दे ऐसे हैं जिनको छूने पर गुस्ल मसे मैत वाजिब नहीं होता है, या अगर गुस्ल मसे मैत वाजिब हो गया है तो कैसे उसको गुस्ल किया जाएगा, उसका तरीक़ा क्या होगा, ये वो सब चीज़ें हैं जो हम अपने आपको और बताएँगे। हमारे अपने अगले प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिए जिसमें हम आपके सामने गुस्ल मसे मैत कैसे किया जाता है और कब कब किया जाता है इसके बारे में बयान करेंगे। तब तक के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।